ओम शांति। आदरणीय शुक्ला दीदी जी हमारे बीच में हैं, हम सभी एक हाथ की ताली से, एक हाथ की ताली हम से दीदी का स्वागत करते हैं। शुक्ला दीदी जी साकार बाबा के समय से लगभग 60 वर्षों से ज्ञान में भी हैं और समर्पित भी हैं। वर्तमान समय आप दिल्ली में हरिनगर में लगभग 70 सेवा केंद्र हैं जिसका आप संचालन करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, और इसके अलावा ओम शांति रिट्रीट सेंटर ORC जो दिल्ली का रिट्रीट सेंटर है उसमें भी आप एक वरिष्ठ बहन हैं और उनका पूरा प्रशासन आप संभालते हैं। मीडिया की जो भी सेवाएं दिल्ली में होती हैं वो भी आपके डायरेक्शन में होती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के साथ जो अपना MOU चलता है उसका भी रीजनल सेंटर हरिनगर में है। तो आप बहुत ही अनुभवी हैं, साकार बाबा मम्मा की पालना लिए हुए हैं, और अभी हम आपसे सुनेंगे वृत्ति द्वारा वायुमंडल परिवर्तन इस विषय पर हम शुक्ला दीदी के क्लास सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है जिनको यहाँ पर एक विशेष तपस्या करने का स्थान मिला है। इस स्थान को, इस स्थान में योग युक्त भट्टी करने के लिए बहुत भाई बहनों की इच्छा है। पुरानी पुरानी भाई बहनों की तो बहुत इच्छा होती है, परंतु सालों साल के बाद नंबर आता है ना? तो उस हिसाब से आप सभी जो भी यहाँ पर पधारे हुए भाई बहन हैं, अपने आप को पद्मा पद्म भाग्यशाली जरूर समझते होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन करना। वास्तव में ये तो एक बहुत बड़ा काम है जो प्राण बाप दादा ने हम सब बच्चों की को जिम्मेवारी दी है। विश्व परिवर्तन की वेला में प्राण बाप दादा की हम बच्चों के प्रति यही शुभ इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे सशक्त बन जाएं, संपन्न हो जाएं, बाप समान स्थिति को प्राप्त कर ले और इतने कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंच जाएं जो इनको देखते ही, इनकी दृष्टि पड़ते ही समस्त विश्व के अंदर एक लहर फैल जाए। बाबा की ये शुभ इच्छा हम सब बच्चों के प्रति है, और उसी विचारों को लेकर बाबा हम सब बच्चों को हर रीति से तैयार करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष की वाणियों के अंदर भी प्राण बाप दादा ने वृत्ति से वृत्तियों का परिवर्तन के ऊपर विशेष हम सबका अटेंशन खिंचवाया। तो उसके लिए प्राण बाप दादा ने यज्ञ के स्थापना के समय ही सबसे पहला काम नेचुरल ट्रीटमेंट दिया हम लोगों को, नेचुरल चेंज हमारे अंदर कैसे आए। क्योंकि आप देखेंगे हम सब की वृत्तियां, स्मृतियां, वृत्तियां कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियसनेस थी, हमारा दृष्टिकोण भी स्थूल रूप में स्थूलता की तरफ ज्यादा जाता था, विकारों में लिप्त थे और हमेशा ही क्या करते रहते थे, हम लोग वायदे करते थे और फरियादे करते रहते थे और अपने आप को नीच नमाना समझते रहते और समझते थे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हम ऊंचा नहीं उठ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी भावनाएं हम सबके अंदर अच्छी प्रकार से जागृत हो गई थी। अब बाबा ने, बाबा को जब शिव बाबा ने एक कार्य सौंपा, तुझे चेंज लाना है और एक ऐसी दुनिया बसानी है जहां सुख और चैन की बंसरी बजती हो और जहां सभी जीवन ऐसा जिए जो दूसरों के लिए एक मिसाल हो, तो उसके लिए सबसे पहले बाबा ने हमारे को इन सब बातों से छुड़ाने के लिए हम सबकी स्मृतियों को, हमारी कॉन्शियस को बदल दिया। बॉडी कॉन्शियसनेस से हम लोगों को सोल कॉन्शियसनेस में लाया, क्योंकि स्मृतियों से ही वृत्ति दृष्टि बनती है। तो हमारी स्मृतियों को बदला और हमारी स्मृतियों में ये जागृत कर दिया कि तू आदि अनादिकाल से पवित्र आत्मा है, तू सशक्त आत्मा है और तू ही पूज्य है, इष्ट है, तू ही विश्व को परिवर्तन करने वाली है। अनेक अनेक प्रकार की उच्चतम स्मृतियों को बाबा ने हम सब बच्चों के अंदर जागृत किया, क्योंकि कहते हैं कि जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं वैसी उसकी वृत्तियां बनती हैं। अब व्यक्ति के विचार अगर यही है कि मैं संसार में कुछ नहीं कर सकता और हमेशा विचारों के अंदर बाहर मुक्ता रहती है, तो बाहर मुखी होने से उसके व्यर्थ बाहरी संकल्प ज्यादा चलने के कारण उसकी जो वृत्ति है वो वैसे ही बन जाती है। तो बाबा ने सबसे पहले हमारी स्मृति को, हमारी कॉन्शियस को चेंज किया और इतने तक हमारी बुद्धियों के अंदर, हमारी स्मृतियों के अंदर ये बात डाल दी कि ये बच्चे तू ही चढ़ती कला है, तू ही चढ़ता सूरज है। तो जब हमने इस बात को अंदर ही अंदर एनालाइज और रियलाइज किया तो हमारे अंदर हमारी सुषुप्त शक्तियां जागृत होने लगी और हमने अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर दिया कि मैं नीच नहीं, मैं पापी नहीं, मैं तो भगवान के मस्तक की मणि हूं। मुझे याद आता है कि जब मेरी फर्स्ट मुलाकात ब्रह्मा बाबा के साथ हुई अमृतसर में, तो आप पहले रिकॉर्ड ग्रामोफोन होता था ना, तो वहां एक मेरे कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा गया, तो मैंने उसे तुम ही हो माता पिता तुम ही हो ये गीत लगाया और उस गीत के अंदर था कि मैं तेरे चरणों की धूल हूं। तो जब मैं ये लगा रही थी तो बाबा की तरफ से आवाज आई, बच्ची बस बस बस, कौन बुद्धू बच्ची बैठी है। मेरी सोच में पड़ गई, फर्स्ट मुलाकात में मेरे को बाबा ने बुद्धू बच्ची कहा तो मैं थोड़ा सा ऐसे सोच में चली गई। अब जब बाबा ने देखा कि ये बच्ची बोरा थोड़ा सा सोच में गई है तो कहा इधर आओ। वे बाबा के सामने गई तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, तू मेरे, तू बाबा के चरणों की धूल नहीं है, तू बाबा के मस्तक की मणि है। अब जब बाबा की तरफ से ये शब्द मेरे सामने आया तो आप समझते हो मेरे में क्या हुआ होगा। जिसको भगवान को पाने की इच्छा है, जो भगवान से अपना इनहेरिटेंस लेना चाहती है, उसको इस शब्द से जब कोई बाबा की तरफ से भगवान की तरफ से संबोधित किया जाए तो उसके मन में क्या पैदा होगा, कि मुझे मस्तक मणि बनना है। ठीक है, अब जब इतनी ऊंची स्मृति कॉन्शियस के अंदर आ गई तो वो स्मृति क्या करेगी, दृष्टि वृत्ति सब चेंज कर देगी। फिर स्मृति चेंज हो गई तो दृष्टि वृत्ति को चेंज करना मुश्किल काम नहीं। आठ बाबा कहते हैं वैराग वृत्ति को धारण करो, तब ऑटोमेटिकली ही विरक्त हो गए। विरक्त किया नहीं जाता, विरक्ति आती है। तो जब तक हम बच्चों के अंदर ये विरक्त भावना पैदा नहीं होगी, हमारी स्मृतियां श्रेष्ठ नहीं होगी, दृढ़ नहीं होगी, एकाग्र नहीं होगी, तब तक हमारी वृत्तियों के अंदर, हमारी दृष्टि के अंदर वो पावर नहीं आ सकती जो बाप दादा चाहता है। बाप दादा आज हम बच्चों से बहुत कुछ चाहता है। बाप दादा यहां तक चाहता है कि तुम यहां खड़े हो जाओ सामने, तुम्हारे नैन, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी रूहानियत, तुम्हारी दृष्टि जब किसके अंदर पड़े वो चेंज हो जाए। उसके पहले कुछ ऐले संस्कार खत्म होकर उसके अंदर एक संकल्प पैदा हो जाए कि जीवन है तो ये है। इसको कहते हैं वृत्ति चेंज करना। तो वृत्ति, कोई साधारण व्यक्ति किसकी वृत्तियों को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, वो साधारणता ला सकता है क्योंकि उसकी अपनी वृत्तियां साधारण है, तो वो यही प्रयास करेगा कि जैसी मेरी वृत्तियां हैं वैसे इसकी हो, है ना। परंतु आंतरिक वृत्तियों को, जो जन्म जमांतर से जिन वृत्तियों के जाल के अंदर हम बंधे हुए, फंसे हुए, जकड़े हुए हैं, उनको चेंज करना साधारण स्थिति का काम नहीं है। आप देखेंगे आगे प्राचीन समय में भी एक गायन है कि योगी जहाँ राज, ऋषि और योगी जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में बैठ करके योग तपस्या करते तो उनकी शुद्धता, उनकी शांति का, उनके एकाग्रता का प्रभाव जंगली जानवरों के ऊपर भी पड़ता जो हिंसक वृत्ति के होते, और वो क्या करते, उनके चरणों में, जिसे आम जनता डरती है और वो हिंसक पशु जाकर के उस महात्मा जी के, उस राज ऋषि के आगे, उस योगी के आगे, उस संत के आगे नतमस्तक होते। कैसे हुए, उनकी मनोस्थिति इतनी शांत, इतनी एकाग्र, इतनी शीतल थी जिसके कारण उसका प्रभाव वायुमंडल के अंदर फैल गया और उस वायुमंडल के अंदर जो भी आता वो उसके अंदर कुछ गलत काम नहीं कर सकता। जैसे आपने रामायण पढ़ी है तो रामायण के अंदर भी आपने देखा सीता जी कुछ गलती के कारण रावण को साधु रूप में देखकर उनके पंजे में फंस गई, है ना, ले गए वो उठा करके उनको। परंतु सीता जब अशोक वाटिका पे बैठी है, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो उन्होंने अपने आगे इतनी योग तपस्या की वार्ड लगा दी जो रावण अनेक प्रकार के रूप रच करके आता, अनेक सुंदर सुंदर पोशाक धारण करके आता, अनेक धन दौलत से संपन्न होकर के आता, अनेक प्रकार के विचित्र रूप रच करके आता, परंतु उनके नजदीक जाते ही उनको भय लगने लगता, डर लगने लगता और वो भाग जाता। वो गलत दृष्टि से उस समय सीता जी को नहीं देख सका, देख पाता था, कुछ गलत काम नहीं कर पाता था। आज प्राण बाप दादा भी हम बच्चों से, हम सबको कितने सुंदर सुंदर नामों से आज भी वाणी अगर पड़ी हो तो क्या आप लोगों ने सुना, अल्लाह वल दीन के चिराग हो तुम, सुना, शिव शक्ति हो तुम, शिव तेरे बिना कुछ नहीं और शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं। तो जब हमारा जो कंबाइंड है, कंपेनियन है, वो शिव है ना, साथी शिव है, हम उसके साथ कंबाइंड है और शिव शक्ति है या शिव पांडव है ना, तो हमारी वृत्तियों में, हमारी समृत्तियों में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो वातावरण के अंदर अपने आप फैलती रहे और जो उसके अंदर आए उसके अंदर भी चेंज आए। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे संसार के, आप आज के संसार का जो समृद्धि विचारधारा है वो समुन्द्र की तरह है, अनेक अनेक प्रकार के विचार पैदा होते रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार की वृत्तियां पैदा होती रहती है उसके अंदर। अब उनको चेंज करने के लिए जैसे, और कहते हैं ना, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम पाओगे। तो समुन्द्र के अंदर भी आप देखेंगे एक मजा आनंद लेने के लिए क्या करते हैं, एक पत्थर उठा करके उसमें डाल देते हैं तो एक तरंग निकलती है। तरंग क्या करती है, दूर से तरंग आकर के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम सब जो भी संकल्प करते हैं, हम सब के अंदर जो भी विचार चलते हैं, दुनिया में भी किसी व्यक्ति के अंदर भी जो भी विचार चलते हैं वो सब तरंगों के रूप में वायुमंडल के अंदर फैलते हैं। परंतु लोग समझते हैं ऐसा नहीं हो सकता, परंतु ऐसा होता है। तो उसी के लिए बाबा हम सबका ध्यान संकल्प के ऊपर विशेष खिंचवाते रहते हैं। बच्चे, संकल्प एक बीज है, संकल्प एक बीज है, जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल निकलेगा। तो हमारे संकल्पों को प्यूरिफाइड करने के लिए बाबा हमें हर तरह से, आप देखेंगे, ज्ञान से, योग से, धारणाओं से, सेवा से, अनेक प्रकार के पुचकार से, लाड से, प्यार से सींचता रहता है माली की तरह, है ना। और हम सबको संकल्पों के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाता है कि बच्चे, जैसे हमें अनुभव है इस बात का, कई बच्चे बाबा के सामने जब जाते थे तो कहते थे बाबा बहुत माया आती है, बहुत माया आती है, कैसे जीते इस विकारों को, बुराइयों को। तो बाबा पता क्या कहता था उस समय, कहता, अच्छा बच्चे संकल्पों में आता है ना तो कुछ बात नहीं है, तेरा पाप नहीं बनेगा उसको वहां से उठाने के लिए, परंतु कर्म नहीं करना, कर्म करेगा तो भी कर्म बन जाएगा। अब फिर जैसे जैसे आंतरिक स्टेज बढ़ने लगी तो बाबा ने संकल्पों के ऊपर भी हम सबका ध्यान अच्छी प्रकार से खिंचवाया, क्योंकि जितने जितने हमारे संकल्प शुद्ध होते जाएंगे, प्यूरिफाइड होते जाएंगे, उतना उतना संकल्प शक्ति संसार के अंदर जो काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। संकल्प का तेज सूरज के तेज से बढ़ करके, जैसे सूरज का तेज जब देखेंगे, सूर्य उदय होता है संसार का अंधेरा मिट जाता है, सूर्य जो उदय होता है भूमि के अंदर इतना दूर होते हुए भी उसकी गर्मी से भूमि के अंदर अनेक कीड़े मकोड़े, अनेक जहरीले बरीले जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं और फिर अनेक प्रकार की वस्तुएं, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं में जान मिलती है। अगर एक महीना सूरज ना निकले तो क्या हालत होती है ना। तो सूर्य के अंदर जब इतनी महान शक्ति है और भगवान क्या कहता है, तू मेरे बच्चे क्या हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था, सूरज भाई कहीं बोल रहे थे, हम कौन है, हम पवित्रता के सूर्य है ना। अब जहां इतने ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाए, पवित्रता के सूर्य प्रकट हो जाए, वहाँ क्या होगा? वहाँ वातावरण को बदलना, लोगों की वृत्तियों को चेंज करना मुश्किल काम नहीं है। पर मुश्किलाहट कब आती है? जब हमारी स्थिति डावाडोल होती रहती है, एकाग्र नहीं होती है। तो एकाग्र स्थिति को बनाने के लिए प्राण बाप दादा हम बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं कि बच्चे तुम ज्वालामुखी बनो, है ना? आपके तो पंजाब के पास ही ज्वालामुखी है ना? क्या होता है वहां पर, है ज्वाला निकलती, लावा निकलता रहता है। जब लावा इकट्ठा होता है तो फटता है, और फटता है तो उसका प्रभाव दूर दूर तक जाता है, है ना? ऐसा सुना हुआ है। ऐसे ही हमारी योग युक्त स्थिति इतनी ही ज्वालामुखी की तरह होनी चाहिए। तभी कहा गया योग अग्नि, योगाष्ट अग्नि दग्धो विकर्म। योग एक ऐसी अग्नि के समान है जिस अग्नि में जोर डालो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ऐसी अगर हमारी योग अग्नि हमारे अंदर, स्नेह की अग्नि, परमात्म लव की अग्नि, परमात्म प्यार की अग्नि, कल्याणमयी भावों की अग्नि जलती रहेगी तो क्या होगा? जहां कल्याण है वहां अकल्याण हो नहीं सकता है, है ना? तभी बाबा बच्चों को बार बार एक ही बात समझाते रहते हैं, तुम कौन हो, है ना? सिर्फ हम गाते हैं परंतु मान करके चलते नहीं, सदा चलते नहीं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हम बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, कल्याणकारी कर्म मेरे हैं, सद्भाव और सद्भावनाएं मेरी है क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिखाई है। परंतु थोड़ी देर के बाद फिर माया के साथ दोस्ती लग जाती है या इधर उधर का प्रभाव आ जाता है, जिसके कारण वो कल्याणमयी भाव, कल्याणमयी भावनाएं, सद्भाव सद्भावनाएं बादलों की तरह छिप जाती है, जिसके कारण आज हम कई पुराने पुराने बच्चों के अंदर वो नूर, वो ज्योत दिखाई नहीं देती है। नहीं तो वास्तव में देखा जाए हम बच्चों के अंदर वो नूर दिखाई देना चाहिए। हम लोगों को देख करके, जैसे मुझे जानकी दादी का हमेशा, या ब्रह्मा बाबा को देखो, मम्मा को देखो, उनके अंदर वो नूर, प्रकाशवाणी दादी को देखते, उनके अंदर वो नूर, वो ज्योत दिखाई देती, तभी तो लोग उनके पीछे भागते, नहीं तो क्या जरूरत है भागने की उनके पीछे, नहीं? वो ज्योत उनके अंदर वो दिखाई देती है, वो संयम, वो त्याग, वो तपस्या, वो वैराग्य दिखाई देता है उनके अंदर, वो उपराम वृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। तो किसी को देख करके ही तो वो लहराएगी, वायुमंडल बनेगा, ऐसे ही बन जाएगा। वायुमंडल तो व्यक्ति विशेष से ही बनता है, हम सबकी वृत्तियों से बनना है। तो अब समय है हम सबको अपनी वृत्तियों को पावरफुल बनाने। अब वो कैसे पावरफुल बने? हमारी वृत्तियां कब पावरफुल बनेंगे? जब वस्तु, व्यक्ति, वैभव इन सब से ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि वृत्तियों को साधारण कौन बनाता? वस्तु, व्यक्ति, वैभव। और जिसके लिए प्राण बाबा ने हम बच्चों को पहला लेसन ही सिखाया कि देह और देह के संबंध को भूल, देहभान को भूल, जात को भूल, पात को भूल, तो अपने आप को चैतन्य ज्योत समझ करके चल। और प्रेम का घी रोज उसके अंदर डालता जा, और वो ज्योत जगती हुई। पिछले दिनों की वाणियों में अगर आपने पढ़ा होगा तो बाबा ने एक शब्द से हम लोगों को संबोधित किया, तू मेरी चैतन्य ज्योत हो, जागती ज्योत हो। अब हम जब ये पढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए ख्याल आता है कि भगवान ने हमें बहुत ऊंचे शब्दों से संबोधित किया है ना। परंतु वो वैसा ही हाल होता है, अगर इफ यू डोंट माइंड, वैसा ही हाल होता है। कहते हैं बच्चा जब गर्भ में होता है ना तो भगवान के आगे रिक्वेस्ट करता है, भगवान जी जल्दी इस खून पार की नदी से निकाल दो, मैं फिर गलत काम नहीं करूंगा। चलो फिर ड्रामा अनुसार जब बाहर निकलता है तो क्या बोलता है, ओवा ओवा ओवा। इसका क्या मतलब है, जो मैंने वायदा किया था वो वहां का वहां ही रहा, मैं वैसा का वैसा ही हूं, है ना। तो आज भी हालत यही है हम लोगों की। बाबा जब हम ये संबोधित करते हैं तो हमारा मन मानता है कि ठीक है, बाबा ने बहुत अच्छा कहा है, आज लेकर मैं जरूर अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाऊंगी, अपने आप को एक सशक्त रूप में पेश करूंगी, है ना। फिर जब कोई समस्या आती है, छोटी सी बात आ जाती है, आजकल तो यहां तक देखा, छोटी सी बात आ जाती है तो छुई बुई के पौधे की तरह ऐसे मुरझा जाते। चले वतन को आजाद करने, चले वतन के अंदर सशक्त बनाने की धूम जमाने, हाँ, और खुद ही तंग गलियों में क्या करते हैं, तंग गलियों में खो जाते हैं, है ना। तो जब हम खुद ही तंग गलियों में खो जाते हैं, हाँ, खुद ही खो जाते हैं, खुद ही हमारी मनोस्थिति छोटी छोटी बातों में मुरझा जाती है, हलचल में आ जाती है, एकाग्र चित नहीं होकर के रहते हैं हम, तो बताइए हम देश को, समाज को अपने से क्या दे पाएंगे। तो आज बाबा ने बहुत अच्छा वाणी में कहा कि दूसरों को नहीं देखो, तुम अपने को देखो, अपने आप में एक संकल्प कर लो कि मुझे चढ़ता सूरज बनना है, मुझे अपने आप को सशक्त बनाना है, संपन्न बनाना है, कर्मातीत बनाना है, अपने चेहरे और चलन से सेवा करनी है, अपनी मूरत और सूरत में बाप को प्रत्यक्ष करना है, अपने आप को सर हृदय बनाना है, अपने रोम रोम हर श्वास संकल्प में कौन सी भावनाएं जागृत करनी है, कल्याण 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 कल्याण, मेरा भी भला, तेरा भी भला, समस्त विश्व का भला, है ना। तो अगर एक भी बच्चा ये दृढ़ संकल्प कर ले, है ना, उसको देखकर दूसरे को भी रंग लगेगा, तीसरे को भी लगेगा, चौथे को भी लगेगा, तो फिर क्या होगा, एक लहर फैल जाएगी, एक संगठन बन जाएगा। और जब तक संगठन नहीं बना, जैसे महात्मा गांधी जी को देश को आजाद करने का संकल्प हुआ, जब तक उन्होंने कुछ लोगों का संगठन तैयार नहीं किया, तब तक उनकी वाणी में वो ओज नहीं आया, वो शक्ति नहीं आई, तब तक कार्य उतनी कार्य करने की क्षमता भी नहीं पैदा हुई। उन्होंने अपनी मनोस्थिति को इतना स्ट्रांग बनाया और मनोस्थिति को इतना स्ट्रांग बनाकर एक संगठन तैयार किया, और उन्हीं संगठन के बल से, अहिंसा के बल से विदेशियों को बताया, एक संकल्प के बल से, समझा, ठीक है। ऐसे ही हम बच्चे
जब तक संकल्पों में दृढ़ता नहीं लाएंगे, तब तक अपने आप को बिल्कुल मन वचन कर्म से शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी, संस्कारों में दिव्यता नहीं आएगी, तब तक हमारी वृत्तियां भी इतनी पावरफुल नहीं बन सकती, हमारा मनोबल भी इतना नहीं स्ट्रांग हो सकता जो हम दूसरों के अंदर ये वायुमंडल बना सके, ये साकाश दे सके कि तुम भी चलो हम भी चले, चले वतन की ओर, है ना। परंतु वतन की ओर ले जाना तो चाहते हैं, पर मेरे साथी अपने आप को इतना तैयार नहीं कर पाते जो उनके हाव भाव, उनके रहन सहन, खान पान, बोल चाल, व्यवहार को देखते हुए लोग कहें चलो ये चला वतन की ओर, ये तैयार हो रहा है, तो मैं इसको देख करके भी अपने आप को तैयार तो कर लूं। जैसे मम्मा बाबा को हम तैयार रूप में देखते थे, ऑलवेज रेडी, है ना, और ऑलवेज चमकीली ड्रेस पहने हुए रहते थे, हा? चेहरे से मस्तक से दिखाई पड़ता था, दादी प्रकाशमणि के चेहरे और मस्तक से दिखाई पड़ता था। आज दादी गुलजार को भी देखते हैं, दादी जानकी जी को देखते हैं, इनके रूप से हमें दिखाई पड़ता है। आज हमारे मन में क्यों नहीं ये संकल्प पैदा होता, सिर्फ कहना है कि विनाश होने वाला है, जी आप ही चलो, आप ही छोड़ो इन बुराइयों को, और खुद साक्षी होकर के बैठ के देखो जिन बुराइयों के लिए मैं उनको कहती हूँ छोड़ो, जिन अलग सरल बेलेपन के लिए मैं उनको कहती हूँ तुम छोड़ो, वो आलस और अलबेलापन मेरे पास कितना डेरा लगा के बैठा है ना, तो फिर कैसे होगा, मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता कैसे आएगी। हाँ, और फिर मेरे को, मुझे अच्छे पुरुषार्थी को अपने आप को तीन बातों से भी दूर रखना है। वो तीन बातें कौन सी है? एक आप देखेंगे हमारे अंदर चलते चलते अनुमान पैदा हो जाता है, पहला वहम पैदा हो जाता है, फिर शक पैदा हो जाता है, फिर अनुमान पैदा हो जाता है। देखो सब अपने आप को झांक के, चलते चलते ये तीन बीमारियां आती है, वहम, शक, अनुमान, आता है। वहम भूत के समान है, जैसे किसी को भूत चिपट जाए तो उसकी हालत बड़ी खस्ता टेरी बंकी हो जाती है, वो टिक करके बैठ भी नहीं सकता, वह स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि वहम की बीमारी उसके अंदर पैदा हो गई। फिर आ गया शक का भूत, और जिससे शक का भूत पैदा हो गया उसकी हालत क्या होगी, जहां भूतों का वास हो वहां जाले ही जाले होते हैं, अंधेरा ही अंधेरा होता है, भय और डरावनापन ही पैदा होता है ना। और फिर अनुमान जहर के समान है। अगर हम सच्चे पुरुषार्थी बन रहे हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी वृत्तियों से एक वृत्तांत बन जाए, वायुमंडल शुद्ध हो जाए, तो वो तब बनेगा जब इन तीन बीमारियों से हम अपने आप को दूर रखें। कौन कौन सी है? वहम, शक और अनुमान। ये व्यक्ति को, जैसे आप देखेंगे किसी वृक्ष के अंदर दीमक लग जाती है तो दीमक क्या करती है, खोखला कर दी। आप अभी तो लोगों ने लोहे की चौखटें लगाने से शुरू कर दी, पहले दीमक बहुत होती थी, अब तो दीमक के कई इलाज भी निकल आए, और वो अंदर ही अंदर लकड़ियों को, चौकटों को ऐसे खोखला कर देती, राख ही राख, राख ही राख नजर आती है ना। ऐसे ही दीमक फलते फूलते पेड़ को भस्म कर देती है, ऐसे ही अच्छे पुरुषार्थी जीवन को, जिसकी चाह है कि मैं ऐसा सशक्त बन जाऊं, अपनी सर्वोत्तम स्थिति के सिंहासन पर अपने आप को स्थित कर लूं, अगर उसके अंदर ये तीन पैदा हो जाए, वहम भूत और अनुमान, वो उसको, उसकी खुशियों को, उसकी शक्ति को, उसकी प्योरिटी को, उसकी सब चीजों को भस्माभूत कर देती है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं हम एक ऐसे संसार का निर्माण करें जहां प्रकृति और पुरुष दोनों ही सशक्त और संपन्न हो और सत्व प्रधान हो, जहां चारों तरफ खुशहाली हो, है ना, तो उसके लिए हमें बहुत अपने ऊपर परहेज और अटेंशन रखने की जरूरत है, और बार बार चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज करने की आवश्यकता है, और साथ साथ ये भी जानने की, साक्षी होकर के, जैसे आज भी बाबा ने कहा, साक्षी होकर के अपने आप को देखो, किसी को नहीं देखो, साक्षी होकर, जैसे दूसरों को देखने के लिए तुम्हारी आंखें बहुत बहादुर बन जाती हैं, ऐसे तुम्हारी आंखें खुद को देखने के लिए बहादुर बन जाए, और साक्षी होकर के अपने आप को देखो कि कोई ऐसा कांटा, कोई ऐसा जहरीला संस्कार, कोई ऐसी साधारणता जो परमात्म प्रभु प्रिय आत्माओं को उचित नहीं है, वो मेरे में तो नहीं। अगर मेरे में है तो मुझे वो महान और श्रेष्ठ आत्मा बनने नहीं देगा, अगर मैं श्रेष्ठ और महान नहीं बनी तो मैं जो मुझे मेरे पिता ने काम दिया है, वृत्ति से वृतांत, वृत्ति से वायुमंडल को बदलो, तुम ना तो मैं अपने को बदल सकती, ना मैं समाज को बदल सकती, ना मैं अपना कल्याण अच्छी तरह से कर सकती, ना मैं दूसरों का कल्याण कर सकती। तो अगर मुझे करना है तो मुझे अपनी ज्ञान योग की पढ़ाई के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है, अमृत वेले के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है, और साथ साथ खान पान के भी। आज एक और बीमारी चली, शुरू में हम देखते थे बाबा अन्न दोष के ऊपर बहुत समझाते थे, और आज हमारे भाई बहन इसके ऊपर परहेज नहीं करते, जहां बैठेंगे खा लेंगे, जहां से आएगा वहां से खा लेंगे, जो आएगा खा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमें महान आत्मा बनना है, संसार के वातावरण को बदलना है, वायुमंडल का शुद्धिकरण करना है अपने संकल्पों के द्वारा, तो अन्न की शुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। मैं कहती हूं कि हमारी प्रकृति इतनी सत्व प्रधान बन जानी चाहिए जो इस प्रकृति के अंदर वो अन्न ठहर ना सके। अगर सचमुच, मुझे अपने एक बचपन की बात, जब हम शुरू में चले तो हमारा तो पहले से ही शुद्ध पवित्र अन्न बहुत था। एक दिन ऐसे ही कोई माता ने कहा, दीदी हमारे घर में चल करके खाना खा लो ना, क्या है। अभी दीदी नहीं बनी थी मैं, घर में ही रहती थी, परंतु मैंने आधी रोटी खाई होगी, परंतु ये शरीर, क्योंकि इसमें ना प्याज गया, ना लहसुन गया, ना इधर उधर का कोई अशुद्ध अन्न गया है ना, तो वो पता नहीं उसने किस वृत्ति से बनाई थी, क्या वो मेरे शरीर में ठहर नहीं सके, मुझे बहुत सारी उल्टी आने लगी ना। मुझे को आया कि मैंने ऐसा तो कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, ये उल्टी क्यों आ रही है बार बार, है ना। जब तक उसका अंश तक नहीं निकल गया तब तक चैन नहीं आई मेरे शरीर को, है ना। और आज आप सोचिए, मैं अगर हाथ खड़ा कर लूं कि कितना अन्न की शुद्धि है, कितना मन की शुद्धि है, कितना वातावरण की शुद्धि है, कितना संग की शुद्धि है। क्योंकि जब तक इन सब से हम अपने आप को दूर रख करके अपने आप को शुद्ध नहीं किया, तब तक हमारी वृत्तियों में इतनी शक्ति नहीं आ सकती जो हम दृष्टि पर, हमारी दृष्टि पड़ते ही हमारे संकल्प उठते ही अगला व्यक्ति चेंज हो जाए। बाबा तो ये चाहता है ना भाई, है ना। तो मुझे अगर चेंज, मेरे दिल के अंदर इच्छा है कि मैं बाबा का राइट हैंड बन जाऊं, है ना। जैसे बाबा ने कहा, जो ओटे सो अर्जुन। आज मैं ही अर्जुन बन जाऊं जिसका शास्त्रों में मिसाल है, मैं ही वो बन जाऊं, तो उसके लिए इन सब बातों की वार्ड लगाना, इन सब बातों से अपने आप को दूर रखना और अपने मनोबल को स्ट्रांग करना, अपने आत्मिक बल को इतना सशक्त बना लेना जो लगे कि ये सचमुच एक लाइट हाउस है। आप देखेंगे बाबा ने हमको शुरू में बनाने के लिए दो वरदान दिए थे, योगी बनो पवित्र बनो। जिन्होंने इन दोनों वरदानों को धारण किया शुरू से लेकर, वो आज भी सशक्त दिखाई देते हैं। फिर बाबा ने देखा अब ये इस बात में अच्छे हो गए बच्चे, फिर बाबा ने हमको तीन वरदान और दे दिए, लाइट हाउस माइट हाउस लाइट माइट डिवाइन इनसाइट बन जाओ, है ना। अब इन तीनों वरदानों को हम कहां तक ला रहे हैं, लाइट स्वरूप सब तरफ से लाइट, माइट में मैं कितनी सशक्त हूं और कितना डिवाइन इनसाइट आंतरिक रीति से मैं इतने अपने आप को सशक्त बना चुकी हूं जो मुझे देखते ही लोगों को लगे कि एक किनारा मिल गया, एक सहारा मिल गया और एक अंधों की लाठी मिल गई। अब मैं अपने आप को अच्छी तरह से साकाश लेकर के परिवर्तन कर सकती हूं। क्योंकि मेरा, जैसे बहन ने बताया कि वृत्ति से वातावरण बदलना है, तो मेरे अंदर बड़ा विचार चलने लगा, क्या सचमुच हमारी वृत्तियां इतनी सत्व प्रधान बन चुकी है, हमारे संकल्प इतने शुद्ध हो चुके हैं, जैसा संकल्प मैं करना चाहूं वैसा करके चेंज लाऊं, या वैसे मेरी वृत्तियां इतनी सत्व प्रधान बन गई है जहां मैं बैठूं वहां सत्व प्रधानता आ जाए, अपने आप आए। सूर्य निकलते ही अंधेरा भाग जाता है, उस समय अंधेरे को कहना नहीं पड़ता, तू जा तू जा तू जा, वो अपने आप भाग जाता है। तो जब हम, हमारे को भगवान इतना ऊंची स्थिति के अंदर स्थित करना चाहता है, तो मेरी मनोस्थिति कहां तक कैसी तैयार हो गई जो मैं बाप के संकल्पों को पूरा कर सकूं। पूरा तो करना ही है, मैं नहीं करूंगी कोई और करेगा, मैं नहीं ऊंच पद पाऊंगी कोई और पाएगा, परंतु क्यों नहीं मैं अपने आप को ऐसा सुंदर बना लूं जिससे मैं बाप के संकल्पों को साकार कर सकूं। उसके लिए हमारे को अपने अंदर और भी बहुत सारी धारणाओं की आवश्यकता है। सबसे पहले तो प्रेम, सच्चा स्नेह की लो अपने आप को बनाने की, अपने प्रति भी स्नेह, बाबा के प्रति भी स्नेह, समाज के प्रति भी स्नेह पैदा करने की शक्ति आ जानी चाहिए। और जब तक स्नेह नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। इस बार मेरे को एक प्रसंग याद आता है बचपन का पड़ा हुआ, कि एक बार तीन बूढ़े एक मकान के आगे जाकर के बैठ गए, वो संत टाइप के थे, माता घर से बाहर निकली तो उन बूढ़ों से पूछती है कि आप, ऐसा लगता है कि आप कोई संत हैं, आप हमारे घर में चलिए। तो वो कहते हैं जब तक घर का मालिक घर में नहीं होगा हम किसी के घर में नहीं जाते हैं। तो उसने कहा अच्छा, कहते हैं उसको जाओ पहले तुम अपने घर में अपने पति को देख करके, है वहाँ आपके परिवार के लोग बैठे हैं वहाँ। वो गई, देखा सब कुछ, सब लोग हैं। फिर वो आई, कहाँ सब है, आप चलिए। तो कहने लगे एक का नाम है धन, दूसरे का नाम है सफलता, तीसरे का नाम है प्रेम। अब तीनों इकट्ठे नहीं जाते हैं, तो आप घर से पूछ के आओ पहले कौन सा संत आए। तो माता भागी भागी अपने घर के अंदर गई और अपने पति से पूछती है कि एक संत धन है, एक संत सफलता है, एक प्रेम है। तो उन्होंने कहा अरे धन आ जाएगा तो माला माल हो जाएंगे, तो धन आ जाए। परंतु वो खुद ही कहने लगी धन से ज्यादा तो सफलता का होना बहुत जरूरी है, धन तो आता जाता है, जिसके पास सफलता आ जाएगी उसके पास सब कुछ आ जाएगा। परंतु पास में बहू बैठी थी, वो ज्यादा समझदार थी, कहा मां जी अगर धन सफलता तो आ ही जाएगी, अगर घर के अंदर प्रेम आ जाए तो सब कुछ आ जाएगा, तो पहले हमारे घर में प्रेम आना चाहिए। तो वो बाहर गई और कहने लगी जिस संत का नाम प्रेम है वो मेरे घर में आ जाए। तो तीनों उठ करके खड़े हो गए। वो कहती है यही क्या भाई, आपने तो कहा था हम तीनों इकट्ठे नहीं जाते हैं, तो आप तीनों कैसे चल पड़े। तो कहा जहां प्रेम है वहां धन है वहां सफलता है। तो बताइए आज हम सफल मुहूर्त बनना चाहते हैं, वृत्ति से वृतांत लाना चाहते हैं, वायुमंडल को साकाश देना चाहते हैं, वायुमंडल का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, पहले अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो मैं सच्चे प्रेम के रंग में रंगी हुई हूँ, सच्चे ज्ञान के रंग में रंगी हुई हूँ, अगर सच्चे सद्गुणों में भरपूर हूँ, मेरी धारणाएं कच्ची पक्की हैं या मैं एक मजबूत पिल्लर के समान हूँ, ज्ञान से, गुणों से, धारणाओं से, शक्तियों से भरपूर हूँ, संपन्न हूँ। क्योंकि जहाँ ज्ञान गुण शक्तियाँ नहीं होगी वहाँ भी वृत्तियाँ इतनी शुद्ध नहीं होगी, और वो शुद्ध वृत्तियाँ वायुमंडल को शुद्ध नहीं कर सकती है, परिवर्तित नहीं कर सकती है ना। तो हमारे ज्ञान गुण धारणाएं और शक्तियों से हम जब अपने आप को संपन्न करते जाएंगे, हमारी मनोस्थिति, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, परमात्म निश्चय की नींव जब पूर्ण रीति से मजबूत हो जाएगी, फिर हमारी वृत्ति भी इतनी शुद्ध हो जाएगी, हमारे संकल्पों में भी इतनी शुद्धि आ जाएगी जो हम चाहे, जैसा हमारा बाबा चाहता है हमसे, वैसे कार्य के अंदर हम सहयोगी बन जाएंगे, और एक दिन संसार के अंदर एक ऐसी लहर फैला देंगे जो जिसकी आज आवश्यकता है, आज उसी लहर की आवश्यकता है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज उसी संगठन की आवश्यकता है। तो उसमें सब कोई अपने आप को, खास करके जो पांडव भवन में भट्टी करने आते हैं, उनको तो अपने अंदर इस लहर को मजबूत रीति से पैदा करना चाहिए, तरंगे पैदा हो और उसका स्वरूप बनते जाएं, और जितना हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे स्थिर प्रज्ञ होते जाएंगे और रूहानियत हमारे में आती जाएगी। कहते हैं जहाँ पवित्रता का वास है, सत्यता का वास है, वहाँ दिव्यता अपने आप में आती है। ठीक है। तो जहाँ इन सब बातों का वास हो जाएगा वहाँ वातावरण को बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओम शांति शांति शांति।
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। किस प्रकार का वृत्ति में परिवर्तन लाना है, जिस वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन हो, बहुत अनुभव युक्त आपने बहुत एक बाबा का जो विशेष इस समय का होमवर्क है उस पर समझाया, इसलिए बहुत बहुत आपका इस भट्टी के अंदर जो आप विशेष आए तो सभी की तरफ से बहुत आपका शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।